نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد قال الله تعالى في القران المجيد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد المعدن الجود والكرم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعليه الف الف مره اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد ارشاد النبي صلى الله عليه وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دو رکعت نماز ایسا پڑھ لے کہ کوئی دنیاوی خیال اس کے ذہن میں نہ گزرے, کوئی شخص ایسی دو رکعت نماز پڑھ لے کہ کوئی دنیاوی خیال بھی اس کے ذہن میں نہ آئے, تو اس کے گزشتہ یعنی پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. کتنی آسان بات ہے, مشکل ہے ابھی آدمی نماز پڑھنا تو کوئی مشکل نہیں, دو رکعت میں پچھلے سارے گناہ معاف, ساٹھ سال گیا تو ساٹھ سال کے گناہ معاف, ستر گیا تو ستر کے معاف. صرف کیا کرنا ہے, دو رکعت نماز نفل, دو رکعت نماز. کتنی قیمتی ہے نماز آپ یہ دیکھیں, لیکن شرط ہے ذرا اس پر ایکچولی لگائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. شرط یہ ہے کہ بھائی جو دو رکعت پڑھی جائے جس سے تمام پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے, اس کی شرط یہ ہے کہ اس میں کوئی دنیاوی خیال نہ ہو, یہ ہے شرط. یہی انسان مار کھا جاتا ہے جہاں انسان نے نیت کی, بس نیت کرتے ہی پھر وہ اس کی گاڑی چل پڑتی ہے, سارے حساب کتاب اس نماز میں شروع ہو جاتے ہیں, انسان کے وساوس خیال آنے شروع ہو جاتے ہیں. جس فیلڈ میں کام کر رہا ہے بیچارہ, دکان پہ ہے تو دکان کا خیالات سارے شروع ہو جائیں گے, شاپنگ پہ ہے کوئی جانا تو شاپنگ کے خیالات شروع ہو جائیں گے, کوئی گھریلو معاملات چل رہے ہیں تو اس کے شروع ہو جائیں گے, شادی بیاہ کے کوئی چکر ہے تو اس کے خیالات آنے شروع ہو جائیں گے. پورے پلاننگ جو ہے وہ نماز میں ہو جاتی ہے, اور جب پلاننگ ہو جاتی ہے تو اس کو سلام پڑھ لیتے ہیں, نماز ہماری ہو جاتی ہے. کتنا مشکل ہے یہ دو رکعت ایسی پڑھنا کہ جس میں انسان کو کوئی خیال نہ گزرے, آسان بھی ہے اور کتنا مشکل, اور انعام کتنا بڑا ہے, کتنا بڑا انعام ہے دن میں انسان دو رکعت ہی ایسی پڑھ لے, لیکن پڑھی نہیں جاتی, پڑھی نہیں جاتی. کیا بھائی ایسی رکعت کو پڑھنے کے لیے کیا اہتمام کرے آدمی, سوچے کیا اہتمام کرنا چاہیے کہ ایسی نماز ہم پڑھ لیں, الحمد للہ گناہ معاف ہو جائیں تو گناہ معاف ہو جائیں تو اور کیا چاہیے انسان کو, کیسی نماز کے لیے خوبصورت لباس پہننا پڑے گا, کیا ایسی لباس پڑھنے کے نماز پڑھنے کے لیے کوئی خاص جگہ کا اہتمام کرنا پڑے گا, کیا ایسی نماز کے لیے کوئی خاص خوشبو لگانی پڑے گی, کوئی بہت بڑی مسجد ہو یا کوئی مقدس مقام ہو یا بہت خوبصورت میٹ ہو جس پہ بیٹھ کے آدمی نماز پڑھے تو فوراً ایسی نماز بن جائے, نہیں. اس کے لیے جو چیز چاہیے, نہ اچھی بلڈنگ چاہیے, نہ اچھا لباس چاہیے, نہ اچھی شکل چاہیے, نہ اچھی شروع چاہیے, اس کے لیے اچھا دل چاہیے انسان کے, کیا چاہیے, اچھا دل. بس جب دل اچھا ہو گیا تو الحمدللہ, دو رکعت کی بات نہیں, اللہ کے فضل سے نماز تو ہے ہی, ساری ساری نمازیں ایسے چلے جائیں گی اللہ کے فضل سے, زندگی کی نماز ایسی انسان کی ہو جاتی ہے. بلکہ یہ کہ اگر الحمدللہ ایسی دو رکعت تہجد کے وقت کہیں نصیب ہو جائے, آج کل تو اللہ نے فضل فرمایا ہے سب پر کہ تہجد بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے نمازوں کی, اگر تہجد کہیں نصیب ہو جائے اس دو رکعت کے ساتھ تو پھر تو واہ مزے ہی مزے, پھر تو ایک حدیث ماشاء اللہ ऐसी नमाज अगर तहज्जुद पढ़ ले ऐसी नमाज के साथ जिसमें दुनिया में ख्याल ना हो तो क्या है, उन 70,000 इंसानों में वो औरत और मर्द शामिल हो जाएगा जो बेहिसाब जन्नत में जाएंगे, बेहिसाब जन्नत में जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन चाहिए क्या उसके लिए, दिल अच्छा चाहिए, दिल अच्छा हो जाए तो इंशाल्लाह काम बन जाता है। मुश्किल नहीं है, मुश्किल नहीं है, काम बहुत आसान है अल्हम्दुलिल्लाह। बस सोचें कि दिल को कैसे बनाएगी, क्योंकि ये सोचें आप कि जितनी भी इबादत करते हैं हम, जो नमाज पढ़ते हैं दिल से पढ़ते हैं, अज्जा नहीं पढ़ते, अल्लाह अकबर हाथ भी घुमा रहे हैं, रुकू में जा रहे हैं, सजदों में जा रहे हैं, तो ख्याल ना हाथ पैदा कर रहा है, ना पेशानी पैदा कर रही है, ना इंसान के जिसमें कोई इज्जत पैदा नहीं कर रहा। ख्याल कहाँ पैदा होते हैं, दिल के अंदर होते हैं। तो जो इंसान नमाज पढ़ता है वो किससे पढ़ता है, दिल से पढ़ता है। हज करता है अज्जा से नहीं करता, किससे करता है, दिल से करता है। उम्रे करता है, दिल से करता है। तलावत कुरान करता है, दिल से करता है। हर इबादत जो है इंसान की वो किसके साथ है, दिल के साथ है। और दिल, हम सोचते नहीं कि दिल अच्छा हो जाए हमारा, हिम्मत ही नहीं करते, हिम्मत ही नहीं करते। अगर आदमी कोई हिम्मत कर ले थोड़ी सी, भाई इतना बड़ा सारा मामला, सारा कुछ, सारी जिंदगी का जो हमारा निचोड़ है वो किस पर रखा है, जिस पर अल्लाह ने कुरान में कहा कि कल्बे सलीम, कि सच्चे दिल के साथ जो लोग मेरे पास आएंगे, बनना भी है, जिंदगी भी है, जाना भी है, एक काम है। सारी इबादत इंसान की बड़े आला दर्जे की हो जाती है, एक ही काम आदमी ने करना है बस। क्या काम करना है, दिल को अच्छा करना है, दिल को अच्छा कर ले आदमी, कोई मुश्किल नहीं है। अल्लाह सुभान तआला जब इतने बड़े नाम रखे हैं और सारी इबादत का मरकज दिल रखा है, तो यकीन इसके मामला दिल को सही करने के लिए भी अल्लाह तआला ने तमाम किए हैं। हम इस चीज़ से मुतमिन हो जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, नमाज़ें हम पढ़ते हैं, तलावत करते हैं, कुरान करते हैं, बहुत इन जो काम करते हैं तो सब जाहिर में हो रहे हैं, लेकिन दिल के साथ कौन सा काम हो रहा है ये देखना। जैसे एक नमाज दो रकात की नबी करीम ने मिसाल अता फरमाई, दिल के साथ अगर तू दो नमाज पढ़ ले, दिल के साथ जो नमाज हम करेंगे उसमें क्या होगा, सिवाय अल्लाह की किसी चीज़ का ख्याल नहीं आएगा। जो भी इबादत हम करेंगे दिल के साथ, उसमें सिवा अल्लाह की कोई हो ही नहीं सकती, कोई चीज़ अल्लाह ही होगा उसमें, ख्याल की क्या गुंजाइश है। तो दिल इंसान अपना सही कर ले, दिल का सही करने के बड़ा अच्छा आसान तरीके हैं जो कुरान ने बताया, हदीस ने बताया। हिम्मत करें, करेंगे और क्यों जिंदगी जाया करें, दो ही रकात ऐसी मिल जाए पता नहीं क्या जिंदगी है, घबराने की। दिल आपका है, मेरा तो नहीं है, जैसे कि अभी अपने बेटे को सही कर लें, अपनी बच्ची को सही कर लें, अपने मकान को सही कर लें, करते नहीं करते। तो मैं आपको मशवरा दे रहा हूँ कि अपने आप खुद को सही कर लें, दिल को सही कर लें, तब दिल पे बनता है। कुरान में आया, हदीस में भी तरीके हैं, कोई और कोई तरीके अल्लाह पाक का ऐसा नहीं होता कि जो मुश्किल हो इंसान ना कर सके। बच्चा भी कर सकता है, बूढ़ा भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है, मरीज भी कर सकता है, हर आदमी कर सकता है, वेरी इजी। बताऊं करेंगे, घबराई नहीं, ऊंची आवाज से बोले, रमजान है भाई, मेरे भी रोजा है, आप मैं भी तो बोल रहा हूँ, अब तो खामोश बैठे हैं, रहमत करें, खुलने वाला रोजा, फिक्र ना करें। बड़े अच्छे मौके बात हो रही है, मैं तो अपने लिए कर रहा हूँ, आप तो माशाल्लाह दिल आपके सबके बने हैं, नूर नूर लोग हैं, मैं तो अपनी कमजोरी आपके सामने बयान कर रहा हूँ कि भैया आपके सामने मैं बात करूँ, तक मैं मेहनत करूँ इस पर, आपके लिए नहीं कि अपने लिए बात कर। बड़ा आसान तरीका है दिल की सफाई के लिए भी, सबसे पहली चीज क्या है, तीन चीजें हैं। कितनी चीजें हैं, तीन चीजें करनी है हमने, बहुत आसान है, अभी हो जाएंगी, इसी जगह इसी बिल्डिंग, इसी बिल्डिंग में हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। देख ले अल्लाह ने कितना आसान तरीके इंसान के लिए रखा, और कैसे रमजान में रहमत हो जाएंगे अल्लाह ताला की। तीन चीजें करने की हैं, ये मैं नहीं कह रहा हदीस और कुरान भरा पड़ा है सारा इस पर, मैं तो मुख्तसर बात कर रहा हूँ, हवाले देने शुरू कर रहा हूँ तो फिर तो लंबी बात हो जाती है, लेकिन जो बात मैं कर रहा हूँ इंशाल्लाह मुस्तनद हदीस और कुरान के हवाले से कर रहा हूँ, याद रखें, कोई फजूल बात नहीं होगी, रिकॉर्ड भी होता है, सब कुछ होता है, आपके सामने मौजूद है, इंशाल्लाह साबित करूँगा कुरान हदीस से, फजूल बात नहीं करूँगा। पहली चीज़ दिल की सफाई के लिए, जैसे कमरे को साफ करना है, सबसे पहली चीज़ हुवर नहीं, उसके बाद खुशबू, उसके बाद खिड़कियों की सफाई, तब दिल की सफाई के लिए सबसे पहली चीज, रेडी आप करने सफाई? चलो पहली चीज सफाई के लिए तोबा। क्या चाहिए? तो मुझसे नहीं मांग रहे कि शर्म आएगी, तो आप जैद से नहीं मांग रहे, तो आप दुश्मन से नहीं मांग रहे, तो अपनी बीवी से नहीं मांग रहे, लड़ते हैं बीवी के साथ, नहीं हम क्यों तोबा मांगे, लड़की से नहीं मांग रहे, नहीं मुझसे छोटा है, हमसे ऐसे नहीं मांग रहे, नहीं मैं बड़ा हूं, ये मुझसे क्यों मांगू, किसी से ऐसी आदमी से तोबा नहीं मांग रहे कि आपको शर्म आएगी, किसी ऐसी चीज से आप, ऐसे इंसान से, किसी ऐसी शख्सियत से तोबा नहीं मांग रहे कि आपको शर्म आए, तो आप किससे मांग रहे हैं? अपने खालिक की हकीकी से मांग रहे हैं। वहां क्या शर्माना, उससे क्या शर्माना, उससे भी शर्माने की बात है, उससे क्या शर्मा सकता है, वो तो हर चीज जानता है दोस्तों, वो तो वो जानता है जो फरिश्ते भी नहीं जानते, या करामिन कातमीन भी नहीं जानते, वो तो वो भी जानता है, और वो तो वो जानता है जो तो खुद भी नहीं जानता, तो उसके आगे क्या ऐप हमारे छुपे हुए हैं, क्या कोई चीज छुपी हुई उससे, कुछ छुपी हुई है, बस खल फुल जाओ उसके सामने, अरे आ जाओ, अल्लाह ताला कहते हैं तौबा कर लो। पहली चीज क्या है? तौबा का असर किस पे जाता है? ये नहीं आप ताकतवर हो जाएंगे, जिस्म बन जाए, फौरन जैसे ही तौबा करेंगे शूट पड़ेगा आपके दिल के ऊपर पड़ेगी, एकदम दिल पे नूर आ जाएगा तौबा का, एकदम ऐसा हो रहा फिरेगा उसमें। क्या चाहिए? तौबा क्या होती है? सब कुछ नहीं, तौबा हमने करनी है, करनी है भाई,
इंशाल्लाह।
तौबा कैसे करें? तौबा क्या है? तौबा दो चीजों का नाम है तौबा। जैसे अब कोई मुजरिम है और वो कहता है जी मैं माफी चाहता हूँ, मजिस्ट्रेट से कहते हैं, तो माफी जब भी जाएगा जब उसने कोई गलती की होगी, या नहीं मुझसे चोरी होगी जनाब, मजिस्ट्रेट से कह रहा है तो चीज़ें माफ कर दो। माफ किस चीज़ के लिए मांग रहा है? कि वो मुजरिम है, उसने जुर्म किया है, यानी इज एक्सेप्टिंग, वो एक्सेप्ट कर रहा है, तस्लीम कर रहा है कि मैंने जुर्म किया है। तो हम अपने मालिक की हकीकी के सामने जो हर चीज को जानता है, खुद अपनी जबान से कह रहे हैं तू तो जानता है, लेकिन आज मैं तेरे सामने तस्लीम करता हूं कि मैंने गलत काम किए हैं, कोई नहीं सुन रहा, आप और कौन? अल्लाह। बस उससे हमने कहना है, इसको कहते हैं नदामत, एकदम ऊपर सीट, मैंने ये काम किया, ये काम किया, ये फ्रॉड किया, फलां किया, यानी करते करते आदमी पसीने जाते हैं, बाज़ तो बड़ी अजीब हरकतें हो जाती हैं इंसान से, पसीना छूट जाता है आदमी का, फिर घबराता है शैतान के, बस तू तोबा कह ली, कैसे तोबा तेरी होगी, इतना सख्त रहा गुना, नहीं नहीं वो खाली के हकीकी के सामने आप खड़े हैं इस वक्त, जो कादर मुतलक है, जो कहे कि तुम इतने गुनाह कर जाओ, इतने गुनाहों के जमीन आसमान भर जाए, आ जाओ मेरे पास माफ कर दूंगा, उसके पास सामने खड़े हैं हम, ऐसा नहीं कि भाई मनते करेगा, बाप को मनाने लगो तो हजारों मनते, माँ को मनाओ तो हजारे मनते, किसी शख्सियत को मनाओ तो हजारे मनते करनी पड़ती हैं, सुभान अल्लाह। वो तो कहता है कोई मिन्नत नहीं करनी, सब क्या कि तूने अपने उन गुनाहों का एहसास करना है, नदामत करनी है उस पर, पहली चीज है तौबा करिए, क्या मैं मुजरिम हूं, ये नहीं कि दुआ मांग रहे, अगर मैं जनाब झूठा हूं तो फिर तू मुझे माफ कर दे, अगर मैंने किबर किया है तो मुझे माफ कर दे, अगर अल्लाह से माफी मांग रहे हैं, सुभान अल्लाह, सब कहें सुभान अल्लाह, ये माफी का तरीका है एक इंसान का, अल्लाह से कह रहा है अगर मैंने ये किया है, अल्लाह अकबर, हमने ना भी किया हो तो सुभान अल्लाह, कैसी कैसी जात, अल्लाह इमाम अंबिया सिजदे में कह रहे हैं अल्लाह तो मुझे माफ फरमा, और आज का मुसलमान कहते हैं अगर मैंने ये किया है तो मुझे माफ कर दे, दुआएं मांगी जा रही है, अगर मैंने तकबर किया है, अगर मैंने झूठ बोला है, अगर मैंने फलां किया है, ये तोबा नहीं होती, ये तो किबर की आला दर्जे की, तो शैतान ने भी ये बात नहीं कही होगी, मैं अगर वाली बात उसमें डायरेक्ट बात की थी, ये सब ढकोसले हैं, हमने क्या कहना है, हमने किया है ये जो मेरे मौला, हमसे हुआ है, हम कर बैठे हैं, जुल्म क्या है, तबना जुल्म ना अनफुसना वल्लम तगफिर लना, तो हम कर चुके हैं मेरे मौला, हम तो गुनाहगार हैं, तेरे हुजूर में खड़े हैं, बस अब इसको कहते हैं नदामत, बस एक्सेप्टेंस, हमने कहना ही है और क्या कहना है, सिर्फ तस्लीम करने वाली बात है, लेकिन हम ये तस्लीम भी नहीं करना चाहते, دیکھیں کتنا آسان ہے توبہ کا طریقہ. صرف تسلیم کرنا ہے اس ذات کے سامنے کہ جی میں نے یہ کام کیا ہے, ٹھیک ہے. دوسری چیز توبہ میں کیا تو ہے اللہ تعالیٰ, توبہ کی دوسری چیز تو چاہیے نا. چور کیا کہتا ہے, ہن نہیں کروں گا جی, ہن معاف کر دو پھر نہیں میں کروں گا, آج مجھے معاف کر دو کل نہیں میں کروں گا. کہتے ہیں نا بچوں کو ہمارے بچہ کیسے معافی مانگتا ہے, باپ سے مارتا ہے, ڈیڈی آپ معاف کر دیں انشاءاللہ میں نہیں کروں گا, میں نہیں کروں گا, باپ معاف کر دیتے, کرتا ہے نا. تو دوسرا توبہ کا طریقہ جو چیز ہے وہ کیا ہے کہ پہلے تو ماننا ہے کہ میں نے جرم کی ہے, دوسری چیز کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اب نہیں کروں گا انشاءاللہ, بس مسلم ارادہ کر لینا ہے. یہاں آدمی تھوڑا ڈاؤن ہو جاتا ہے, یہاں ڈاؤن ہو جاتا ہے, یہ بالکل نہ گھبرائیں اس چیز کو کہ جس اللہ کے آگے ہم بات کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم نے یہ گناہ دوبارہ نہیں کرنے, تو انشاءاللہ وہ ایسی طاقت رکھتا ہے, قادر مطلق ہے کہ ہمارے گرد ایسے فرشتے قائم کر دے گا کہ اس گناہ کی طرف ہاتھ ہی نہیں جائے گا, اللہ کی فضل سے قدم ہی نہیں اٹھنے دے گا, قدم ہی نہیں اٹھنے دے گا. اس مسمر ارادے پر سارا کام بنے گا, یاد رکھیں. یہاں پہ ہم فیل ہوتے ہیں, یہاں ہم سب فیل ہو جاتے ہیں اس ارادے پر. جو اس ارادے پہ یعنی پہلا تو ہم پھر بھی گزر جاتا ہے معاملہ کہ بھئی ہم نے ایکسیپٹ کر لیا, لیکن جہاں مسمم ارادہ والا معاملہ ہوتا ہے یہاں انسان مار کھا جاتا ہے, یہاں فائٹ چلتی ہے انسان کی. اس میں آدمی ڈولتا ہے کہ بھئی یہ معاملہ خراب ہے, نہیں بس مسمم ارادہ, یہ میں نے کیا اب کبھی نہیں ہوگا, یہ فلاں ہوا اب کبھی نہیں ہوگا, ایسا ہوا اب کبھی نہیں ہوگا, اور مدد کس سے مانگنی ہے, رب الکریم سے بنوا. اسی مجمع میں یہ کام ہو رہا ہے, یہی ہو رہا ہے کام, باہر نہیں کہیں جا رہے, اسی وقت ہو رہا ہے جیسے آپ بیٹھے. اس کو کہتے ہیں توبہ, اور عربی میں کہتے ہیں بیعت ہونا, بیعت. یا ایو النبی جاک المؤمنات, یہ قرآن کی آیت اتری ہے کہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے پاس عورتیں بھیج رہا ہوں, اس میں مرد بھی شامل ہیں. کس کے پاس بھیج رہے ہیں, اللہ خود ہی معاف کر دیتا, نہیں یہ طریقہ رکھا ہے. کس کے پاس بھیج رہے ہیں, نبی یہ کس پاس آ رہے ہیں آپ کے پاس, کون بھیج رہا ہے, اللہ. کیا کرائیں ان کو, بیعت کریں, یعنی یہ توبہ کرا دیں ان کو. یہ قرآن سے ثابت ہے, دیکھیں چیز. دو چیز اتنی بڑی چیز ہے کہ خود نبی کریم سن کے سپرد کیا گیا ہے کام کہ آپ یہ کام کریں گے, اور آج ان کے وارثین یہ کام کریں گے, ان کو مشائق کہا جاتا ہے اور اللہ والے کہا جاتا ہے, یہ کام کر رہے ہیں. سلسلہ قیامت تک چلنا ہے, توبہ تو مانگنی لوگوں نے. اب کیا ہے کہ توبہ پہلے کنفیکشن کرنی ہے, ماننا ہے ساری باتوں, اس کے بعد مسلم ارادہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ کام نہیں کرنا. تو جب یہ دونوں چیزیں آپ نے کر لیں تو کیا ہوگی, ہماری توبہ ہوگی, توبہ ختم. تو دل کے اندر پہلی چیز, پہلا نور توبہ کا چلا گیا. اب توبہ کے بعد دوسری چیز, دل کی صفائی کی بات چل رہا ہے نا, کہ دل صفائی کیسے ہو, کہ وہ دل بن جائے کہ دو رکعت جو ہم پڑھیں وہ سارے گناہوں کو معاف کر دے, دو رکعت ہم پڑھیں تو ہم بے حساب جنت میں چلے جائیں, اس کے لیے تیاری کی جا رہی ہے صرف. اگلی اس کے ساتھ دوسری چیز دل کو بالکل الحمدللہ نور نور کر دیتی ہے, جو قرآن بتاتا ہے, احادیث بتاتے ہیں, جو طریقہ بتایا, وہ کیا چیز ہے, ذکر اللہ, جس کے لیے آپ بیٹھے ہیں یہاں مجمع لگا ہوا ہے الحمدللہ, یہ ہے. وہ کیا چیز ہے, اللہ کا ذکر ہے. بس جیسی ذکر آیا اللہ کا, توبہ کیا ہے, توبہ کس طرح ہوئی, توبہ کے بعد مثال آپ کو دیتا ہوں, کیا یہ ہو جاتا ہے معاملہ, جیسے میرا گندا کپڑا ہے اور میں نے اس کو مشین میں ڈالا, مشین میں ڈالنے کے بعد کوئی دبا نہیں, وہ صاف شفاف نکل آتا ہے. تو انسان جو توبہ کرتا ہے تو صاف شفاف ہو جاتا ہے, بالکل اس کپڑے کی طرح صاف ہو جاتا ہے. اب میں کہتا ہوں جی سفید کپڑا ہے, میرا دل کرتا ہے جی میں اس کو کالا کر لوں, میں جاتا ہوں کہتا ہوں جی وہ جو کرتے ہیں رنگ چڑھاتے ہیں تو جی اس کو کالا کر دو تو دکھے گا, میل شہر نہیں صاف ہے, کالا رنگ چڑھا دے گا. میں کہتا ہوں جی اس کو گرین کر دو, گرین کر دے گا, جو بھی رنگ اس پہ چاہوں گا سفید پہ چڑھ جائے گا, الحمدللہ چڑھ جائے گا نا. تو توبہ اس لیے پہلے ایک رہ جاتی ہے کہ بالکل وہ انسان صاف اور شفاف ہو جائے اس کپڑے کے بعد, اور اس کے بعد اب رنگ چڑھانا ہے, کس کا رنگ, سبقۃ اللہ, کہ اللہ کا رنگ چڑھ جائے اس کے اندر. توبہ کا مطلب یہ ہوتا ہے, ہمیشہ توبہ بیعت اس لیے کہی جاتی ہے ذکر سے پہلے, कि पहले इसको साफ कर लिया जाए, साफ और शफाफ हो जाए, और साफ होने के बाद अब इस पर रंग चढ़ाना है, कोई रंग नहीं चढ़ेगा। जितने भी ख्याल आते थे नमाज में, दुनियावी ख्याल आते थे, मोहब्बतें थी, किसी चीज से मोहब्बतें थी हमारी, जो सब कुछ जो हमारे दिल के अंदर था, जो हमारी नमाजों को डिस्टर्ब करती थी चीजें, ठीक है ना। अब उसकी जगह हमने कौन सा रंग लाना है, वो रंग जितने भी थे, काले पीले नीले उदे, जो रंग हमारे अंदर घुसे हुए थे, जो हमारी नमाजों को खराब करते थे, उन रंग सबको काट दिया तौबा ने, चिट्टा कर दिया। अब उस पर हमें रंग जो चढ़ाना है, अल्लाह जिक्र अल्लाह, अल्लाह के नाम का रंग चलाना है। जब ये तौबा साफ हो गई, बिल्कुल तौबा कर ली, और उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह जिक्र का हमने अहतमाम कर लिया, और जिक्र में अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना शुरू कर दिया, कसरत जिक्र किया, तो अल्लाह का रंग उसके अंदर चढ़ना शुरू हो जाता है दिल के अंदर। हत्ता कि अल्लाह के जिक्र के साथ अल्लाह का रंग दिल में इतना आ जाता है, इतना आ जाता है, तो उसको सोते उठते बिठते चलते फिरते छिरते किसी किस्म का ख्याल ही नहीं आता, बस ख्याल रहता है तो सिर्फ अल्लाह की तरफ ख्याल आता है। ख्याल यार से वाबस्ता खुद से बेगाने, एक शेर याद आ गया मुझे, ख्याल यार से वाबस्ता खुद से बेगाने, बस एक धुन है चले जा रहे हैं दीवाने। आप अल्लाह का जिक्र करने वालों को यही देखेंगे, ख्याल यार से वाबस्ता, कि अल्लाह की जात से इतने वाबस्ता हो जाते हैं, उसकी मोहब्बत में इतने गर्क हो जाते हैं, ख्याल यार, यार तो हमारा वही हुआ ना, ख्याल यार से वाबस्ता खुद से, कि खुद से भी बेगाने हो जाते हैं, अपना ख्याल भी नहीं रहता, ना सेहत का ख्याल रहता है, ना खाने का ख्याल रहता है, ना पहनने का ख्याल रहता है, ना सोने का ख्याल रहता है, ना कपड़ों का ख्याल रहता है, ना किसी चीज़ का, खुद से बेगाने, बस एक धुन है चले जा रहे हैं दीवाने, बस उसकी मोहब्बत में एक धुन लग जाती है, एक एक सिस्टम बन जाता है, एक कैफियत बन जाती है, बेतहाशा उसकी तरफ इंसान बढ़ता चला जाता है, और चलते चलते वो ऐसा चलता है जब उसकी आखिरी मंजिल आती है, तो उस वक्त उसके जबान पर अल्लाह ही होता है और कुछ नहीं होता। मना मेरे दोस्त, बहुत खतरा है, ये मोहब्बतें ऐसी हैं, ये जो अल्लाह के नबी ने ये जो हमें जो एक दो रकात की तरफ इशारा फरमाया है, हकीकत में पूरी ज़िंदगी का अहतमाम दिया है, उस मौत का अहतमाम दिया है, कि मरते वक्त ख्याल रखना कि जिस वक्त तुम मर रहे होगे तो तुम्हारे ज़बान पे वही चीज़ निकलेगी जिसमें तुमने ज़िंदगी गुजारी होगी सारी। जब तुम दो नमाज दो रकात नमाज ही ज़िंदगी में असली पढ़ सके तो तुम्हारी मौत कैसे आएगी अल्लाह कहते हुए, अल्लाह का ख्याल उस वक्त तुम्हें कैसे आएगा, ये बहुत बड़ी तंबीह है ये इस हदीस के ऊपर, कि तुम्हें कैसे ख्याल आ सकता है कि दो रकात नमाज जो तीन या चार मिनट में हो जाती है उसमें तुम नहीं दुनिया को भूल सकते हैं, जो कहेंगे अल्लाह होकर वजू करके आते हो, तमाम मस्जिद में खड़े होते हो, उसमें तुम अपने रब के अलावा हजारों ख्याल दुनिया को नहीं भूल सकते, ख्याल होते हैं। तुम अल्लाह कहते तुम ये बताओ कि मौत के वक्त में अल्लाह कैसे याद आएगा, मौत का वक्त भी वैसा होगा तुम्हें वही चीजें याद हो रहेंगी जो तुम्हारी जिंदगी के अंदर उतर चुकी होंगी। कितनी बड़ी बात है, दिल को क्या करें हम अपने बनाए, किस चीज से तौबा करनी है, और तौबा के साथ क्या करना है, अल्लाह के जिक्र का अहतमाम करना है। ये जो जिक्र किया जाता है ये कोई ये प्रोग्राम नहीं है, ये कोई फंक्शन नहीं है, ये कोई बनावटी नहीं है, ये तो एक इतना अहम जिंदगी का जुज है अल्लाह का जिक्र, कि जिसके बगैर मैंने आपको बता दी कि हम नमाज ही नहीं पढ़ सकते एक सही, अल्लाह के जिक्र के बर्तन हमारी नमाज ही सही नहीं हो सकती, हमारा हज ही सही नहीं हो सकता, हम दो रकात नहीं पढ़ सकते, क्या बात करते हैं हम पांच मास नमाजों की और तहज्जुदों के नवाफिल की, दो रकात हमारी जिंदगी में नहीं आ सकते। अल्लाह के नबी ने चैलेंज किया करके दिखाओ, बकायद दिल की सफाई के तुम दो रकात पढ़ के दिखाओ अल्लाह ताला से, अल्लाह के नबी फरमाते नहीं पढ़ सकते, मतलब ये कि सही करो अपने आप को, दिल के ऊपर तवज्जो करो, सिर्फ दो चीजें चाहिए, एक तौबा चाहिए और दूसरी क्या, अल्लाह का जिक्र का तमाम चाहिए, ये दो चीजें कहां मिलेंगी, दोनों चीजें कहां मिलेंगी, तौबा और जिक्र अल्लाह, ये कहां से मिलेगा, या आयुल्लजी या आयुम तुकुल्ला कून उमा सादकीन, कुरान कहता है कि दोनों चीजें आपको कहां मिलेंगी, ये अल्लाह वालों की सोहबत में मिलेंगी आपको, तौबा भी मिलती है और वहां अल्लाह का जिक्र भी मिलता है, उनकी दुकान पे दोनों चीजें प्रोडक्ट बनते हैं बहुत तरीके से। अगर ये दोनों चीजें लेना चाहते हैं हम, तौबा और जिक्र अल्लाह, तो किसी अल्लाह वाले के पास जाना पड़ता है, जैसे अल्लाह के पास जाएंगे तो दोनों चीजें मिलेंगी, तौबा मिलेगी दिल की सफाई के लिए, और दूसरी चीज क्या मिलेगी, अल्लाह का जिक्र मिलेगा, अल्लाह का जिक्र मिलेगा, ये दोनों चीजें वहां से मिलती हैं। ये कुरान में समय आपके सामने आयत पड़ी, अल्लाह मोमिन थे, मोमिनात को कहा जा रहा है कि जाओ अल्लाह के नबी के पास, में तुम्हें भेज रहा हूँ, वहां जाके बैत करो, वहां तोबा करो। स्त्री क्या बता दिया कि जाओ ये चीजें दो मिलेंगी, कहाँ मिलेंगी? तोबा और जिक्रल्लाह, ये वहीं मिलता है, वहीं अहतमाम होता है। किसी अल्लाह वाले के पास जाओ, उसके पास तुम्हें दोनों चीजें नसीब हो जाएंगी। इसको कहते हैं ताल्लुक बिल्लाह, अल्लाह के लिए किसी से ताल्लुक जोड़ना। दुनिया के लिए तो बहुत जोड़ते हैं ना, कोई ससुर बन जाता है, कोई चचा बन जाता है, कोई मामू बन जाता है, कोई फला बन जाता है, ये रिश्ते हो रहे हैं ना। लेकिन अल्लाह के लिए जब ताल्लुक जुड़ता है वो क्या बनता है? अल्लाह अकबर, शेख और मुरीद, ये कौन सा ताल्लुक है? मामू नहीं, चाचा नहीं, दादा नहीं, ये सब दुनिया के रिश्ते हैं। और अल्लाह के लिए जो रिश्ता बनता है उसको क्या कहते हैं? शेख और मुरीद। इसमें क्या फर्क है? मामू का रिश्ता हो रहा है माँ की वजह से, ससुर बन रहा है बीवी की वजह से, चाचा बन रहा है इस वजह से, और ये जो रिश्ता है शेख का और मुरीद का, ये किसकी वजह से है? अल्लाह की वजह से है। हाँ हाँ, लुत्फी आ गया बात करके। शेख और मुरीद का रिश्ता किस कुछ चीज में नहीं है, क्योंकि आप वहां तौबा और जिक्र लेने गए हैं, अपने दिल को साफ करने गए, यानी अल्लाह को पाने गए हैं आप। तो शेख और मुरीद का रिश्ता किसके लिए हुआ? सारे रिश्तों से बढ़ गया। हमारी शरांग वो तो पहुंच गया कहीं से कहीं, तमाम रिश्तों को खत्म कर दिया उसने, इतना मजबूत रिश्ता हो गया। जाह है कैसी हदीस जहन में आ रही, मैं आपको सुनाता हूँ इस रिश्ते पर। देखिए शेख हदीस लिखी है, फैसल माल में पढ़ते होंगे। जो रिश्ता बना है क्या खूबसूरत, इस पर देखें खुशखबरी आती है इस रिश्ते पर, कि जो दुनिया के रिश्ते हैं मामू में होगा, चाचा होगा, ससुर होगा, लेकिन ये रिश्ता कि जो अल्लाह के लिए बन जाए, कोई रास्ता ना हो, तेरा और मेरा ताल्लुक सिर्फ अल्लाह के लिए है, मैं आया हूँ अल्लाह के लिए तौबा करने और जिक्र सीखने, और तू आया मुझे सिखाने के लिए, ये हो गया बीच में अल्लाह। इसको कहते हैं अल्लाह की मोहब्बत के लिए रिश्ता जुड़ गया। तो अल्लाह के नबी उसके साथ फरमाते हैं, हदीस आती है कि जन्नत के अंदर, जन्नत के अंदर याकूत के सतून होंगे। एक नक्शा है जन्नत के, कौन से? याकूत के सतून होंगे और समर्रत के बाला खाने होंगे, हर तरफ दरवाजे होंगे, खूबसूरत हसीन होंगे, और इतने हसीन होंगे कि देखने वालों के लिए वो चांद और सूरज की तरह चमकते हुए महलात होंगे। होंगे भी कहाँ? जन्नत में। ये तो एक छोटा सा नक्शा खींचा है, यानी खूबसूरती की इंतहा होगी उनकी, खूबसूरती की इंतहा होगी। सतून याकूत के, समर्रत के अपना बाला खाने, और हर तरफ से खुले हुए, अंदर आसाइश, अंदर डेकोरेशन, अल्लाह की तरफ से जन्नत की जो इंसान सोच भी नहीं सकता, और चमकदार ऐसे कि जैसे चांद और रोशनी चमकते हों। और उसमें कौन लोग रहेंगे, किन के लिए बनाया गया है, उसमें कौन, उसके अंदर कौन रिहायश अख्तियार कराएंगे? फरमाइए वो लोग होंगे जिन्होंने अल्लाह के खातिर एक रिश्ता कायम किया होगा। शेख और मुरीद, ये तमाम रिश्ता है। देखिए सदाकत के साथ अगर रिश्ता कायम हो जाए, एक शख्स आता है और किसी अल्लाह वाले के हाथ पे बैत कर तौबा करता है, और तौबा दो चीज़ों के साथ होती है, उसकी नदामत के साथ और असम के साथ। याद रखें कि उसके बाद फिर गुनाहों की तरफ बढ़ता नहीं, जो वादा किया उसने शेख से तौबा किया ना, कि इंशाल्लाह उसके बाद ये काम नहीं करूँगा। इसको कहते हैं रिश्ता, ये होता है शेख मुरीद। हाँ, उसके बाद उसने अगर वही काम किए तो कोई रिश्ता बैत का कायम नहीं हुआ, फिर वो भूल जाए कि उसको वहां जगह मिलेगी। खालिस उन लोगों के लिए है कि जिसका रिश्ता खालिस होगा, याद रखें खालिस उस आदमी के साथ उसका रिश्ता बन गया तौबा का और जिक्र अल्लाह का, उसके बाद उसने गुनाह नहीं किया, अपने बाद में भी कायम हो गया, जो जो शेख ने वादे किए कि भाई तुम्हें ये काम करना है, ये काम करना है, उस पर कायम हो गया, कोई नफाक नहीं आया, कोई मुनाफकत नहीं आई, और पूरे यकीन के साथ जम गया इंशाल्लाह जो वादे किए हैं अल्लाह एहसान करता जाएगा, मैं करता चला जाऊंगा, तब ये रिश्ता रहता है मुरीदी का और शेखी का। याद रखें वरना बैत नहीं आती, वरना ये बैत नहीं, तौबा तो नहीं रही, फिर खत्म हो गई। कहाँ रही तौबा? खत्म हो गई। फिर आप कहते हैं फिर मैं तो फलां का मुरीद हूँ, मैं तो फलां का मुरीद हूँ, ये तो उस पर एक इल्ज़ाम लगाने वाली बात है, मुरीद नहीं है। मुरीद और शेख का रिश्ता तो वो है जो अल्लाह जानता है, उसका गवाह कौन होता है? अल्लाह होता है उसका गवाह कि शख्स मेरे लिए आया है और कायम मेरे लिए। बेशक लाखों मुरीद बन जाए इंसान के, लेकिन मुरीद वही होगा जो इस रिश्ते पर कायम होगा इखलास के साथ, उसने दामत भी की होगी, उसने अज़म भी किया होगा, उसने जिक्र भी किया होगा। ऐसे इंसान के लिए, उस इंसान के लिए खुशखबरी आती है कि तू तो अभी दुनिया में है, महलात तो हमने तेरे लिए जन्नत के अंदर बना दिए गए।
इसमें क्या करना पड़ेगा। पैसे कहते हैं हम तो जी फलां शेख से मुरीद हैं, फलां हमारे जी अक्सर बातें होती हैं, कौन थे जी हम तो फलां शेख से मुरीद हैं, फलां शेख से मुरीद हैं जी, हमारा बड़े बड़े नाम लेते हैं, फलां से मुरीद हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने आपको चांस दे दिया है, अपने अल्लाह ने आपको चांस दे दिया कि आपको उस इंसान तक पहुँचा दिया है, अल्लाह ने आपको तौबा नसीब फरमा दिया है, अल्लाह ने आपको जिक्र को टेस्ट दे दिया है, सब कुछ दे दिया है, लेकिन क्या आप उस चीज़ को अवेल कर सके, क्या आपने उसका फ़ायदा उठाया, मुस्तफ़ीद हो, या सिर्फ नाम ही लगा दिया कि हम तो बैत हो गए हम बख्शे जाएंगे। ये काम नहीं चलता भाई, ये काम नहीं चलता खाली नहीं, तो वही होगा जो शेख ने कहा है, उन्हें ये तो बदनामी वाली बात हो जाती है। ये तो एक ढोंगर के लिए उस आदमी के साथ, वो अंदर से सही था ही नहीं, उसकी नियति ही सही नहीं थी कि मैंने ये काम करना है, और गुनाह करने पे कोई एक्सक्यूज नहीं चलता है भाई, याद रखने। आज मैं कहता हूँ जी मैंने ये काम नहीं करना, मैंने जी मजबूरी है फला नहीं वाला, अल्लाह की किताबों में चीज़ नहीं है कि किसी गुनाह के अंदर कोई मजबूरी नहीं है, जिसको हराम कह दिया अल्लाह ने वो हराम है, चाहे सारी दुनिया की तरफ लग जा रहा हूँ इंसान एक जगह खड़ा है, वो हराम हराम ही रहेगा। ये नहीं कह सकता सब दुनिया कर रही है मैं भी कर लेता हूँ, ये सब फला कर रहे हैं मैं भी ये कर लेता हूँ, ये कोई एक्सक्यूज नहीं है इस चीज़ के लिए। तौबा और बैत वही होगी, याद रखें, तौबा और बैत वही होगी। उन औरतों को कहा जा रहा है जो नबी पाक के हाथ पे बैत कर रही है, कुरान शाहिद है, अल्लाह शुरू न भैया उनसे वादा लें आप ये नहीं करेंगी, जब ये वादे पे कायम रहेंगी तो ऐ नबी तब तेरी ये मुरीद होंगी, माने मुरीद नहीं होंगी तेरी। उनको कहा जा रहा है नबी पाक के हाथ, तो आज के शेख पे हम हाथ पे बैत करते हैं और हम इन वादों पे कायम नहीं रहते, हम उसको कहें उनकी मुरीद नहीं है, मुरीद है, ये तो सिलसिलों को बदनाम करने वाली बात है, ये तो शेख को बदनाम करने वाली बात है। लेकिन वो तो बदनाम नहीं होगा, सजा उसी इंसान को मिलेगी जो धोखा देता है, तो क्योंकि इनामात अल्लाह ने इतने बड़े रखे हैं उसके लिए कि हर नमाज उसको बख्शवा रही है, हर नमाज अल्लाह की तरफ लेके जा रही है, जन्नत में मेराज बन रहे, सिर्फ इस तौबा पर, उस तौबा पर कायम रहेगा। इसको कहते हैं ये तमाशा नहीं है, ये कुरान शायद इस चीज का आसान बेनतहा, आसान बेनतहा, इंसान हिम्मत कर जाए तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई चीज मुश्किल नहीं है। गुनाह करना मुश्किल है, जब इंसान गुनाह से तौबा करता है गुनाह करना मुश्किल हो जाता है, याद रखें, जो इस वक्त हम गुनाह छोड़ना मुश्किल जो हम कह रहे हैं ना कि भाई हमसे गुनाह जो हम करते हैं ये बहुत आसान है, बड़े आराम से कर लेते हैं, तो वो मुश्किल बन जाएगा। अभी क्या ठग से गुनाह किया कर लेते हैं आराम से, अभी एक मिनट गुनाह कर लेते हैं, लेकिन जब तौबा सच्ची हो गई तो फिर गुनाह करना तो बहुत मुश्किल हो जाता है इंसान, फिर नहीं कर सकता इंसान गुनाह, सवाल ही पैदा नहीं होता, सवाल अल्लाह उसके 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 दिल को पकड़ लेते हैं, नूर से भर देते हैं, उसकी हिम्मत ही नहीं होती कि उस गुनाह की तरफ से पढ़ ही नहीं सकता उस गुनाह की तरफ। क्यों होता है तौबा के बाद, तो उसने सच्ची नियत ही नहीं की होती, जब वो अपने शेख के हाथ पे बैत कर रहा होता है या कर रही होती है, उसकी नियत नहीं होती सच्ची नहीं, उसको और तमाशे होते हैं, ख्यालात होते हैं, उस चीज़ को समझते हैं वो धोखा। कुरान कहता है कि धोखा तुम उसको नहीं दे रहे, बल्कि धोखा किसको दे रहे हो, तुम खुद अपने आप पे धोखा कर रहे हो, तुम अल्लाह को धोखा क्या दे सकते हो, इस्तेज़हार नहीं करता अक्सर, तुम खुद अपने नफ्स के साथ अपने आप को धोखा दे रहे हो, हमने तो तुम्हें धोखा इस तरफ लेकर आ रहे हैं और तुम झूठे हाथ पकड़े बैठे हो, जैसे किसी को पता ही नहीं है कि मैं इसको चक्कर दे रहा हूं। ये तो हाथ जो तुमने रखा है ये उसके हाथ में नहीं है, ये हाथ तो अल्लाह तक जाता है इंसान का। यह है सच्ची पीरी मुरीदी, जिसका नाम है, जिसको हमने फैशन बना लिया और ट्रेडिशन बना लिया, रास्ता यहीं से खुलता है, रास्ता यहीं से खुलता है। मेरे भाइयों, तौबा एक ऐसी चीज़ है, देखिए कितनी कीमती चीज़ है तौबा। पूरा रमज़ान जो हमें दिया है अल्लाह ने, हमें नमाजों के लिए नहीं दिया, कुरान पढ़ने के लिए नहीं दिया, तलावतों के लिए नहीं दिया, उम्रों के लिए नहीं दिया, सारी रात जागने के लिए नहीं दिया, ये आखिरी शर्त चल रहा है, आखिरी शर्त जो ये इसका निचोड़ है, खुलासा है रमज़ान का, क्या है खुलासा है, और उन खुलासों में से भी इस आखिरी अशरे के खुलासे में भी अल्लाह ने पांच रातों में रख दिया है, पूरे रमज़ान को आखिरी अशरे में बंद कर दिया और आखिरी अशरे को इन पांच रातों में बंद कर दिया, जो कि एक जा चुकी है, एक जा भी चली भी गई और एक आज है हमारे सामने खड़ी है, 21, 23, 27, 29, इस पांच रातों में पूरे रमज़ान को बंद कर दिया है अल्लाह ताला ने, पूरा रमज़ान इसमें आ गया है पांच रातों में, और पांच रातों में काम क्या है, क्या काम है हमने करना, कोई इबादत अल्लाह ने नहीं बताई, कोई इबादत नहीं बताई अल्लाह ने इन पांच रातों में, जो अगर उसने किसी रात में भी ये काम कर लिया तो उसने पूरा रमज़ान क्या पूरी जिंदगी ले ली। ये रमज़ान इसलिए दिया है हमें अल्लाह पाक ने, नमाजें सारे साल पढ़ते हैं, हज करते हैं, उम्रे करते हैं, इबादत करते हैं, इसलिए नहीं दिया कि भाई हम तो वही काम करते हैं कि बस रमज़ान में जोर लगा लो और नमाज पढ़ो बस बख्शे बख्शाए हो गए, ये मामला नहीं है। अजीब अजीब हमने अपने تھیوری بنا لی مذہب کے بارے میں اور سائیکولوجی استعمال کرنا شروع کر دی. رمضان میں فل مسجد, رمضان ختم مسجد غائب, فجر بھی غائب. یہ کون سا دین ہے بھائی, کون سا دین؟ رمضان تو آیا اس لیے تھا کہ اب مسجدیں ایسے ہی بھریں گی نمازیوں سے, اب ایسے ہی قرآن شریف پڑھا جائے گا, اب ایسے ہی آوازیں آئیں گی مسجدوں سے ہر طرف کونوں میں لے کے لوگ قرآن بیٹھیں گے. کہ کہاں گئے لوگ 30 دن کے بعد؟ اللہ کہتا ہے یہ بہت دھوکے باز لوگ ہیں, میں نے تو رمضان اس لیے دیے تھا کہ تمہیں پریکٹس کرا رہا تھا, ریمائنڈ کرا رہا تھا, تمہیں یاد دہانی کرائی تھی کہ تمہوں نے ساری زندگی ایسے ہی گزارنی ہے, اور تم تو 30 دن کے بعد یہ کام کر کے بس جی اللہ تعالیٰ ہم نے کر لیا کافی ہے 30 دن, اب ہم سے نہیں ہوتا یہ کام. اللہ اکبر, کتنا بڑا دھوکہ ہے, فراڈ کر رہے باتوں سے. 30 دن تو بھر دی مسجد, اس کے بعد ہے یہ تو اب چاہیے تو یہ تھا, لیکن یہ زندگی ہماری تو توبہ کیا ہے, یہ چیز تھوڑی ہے. ایسا نہیں کہ رمضان کا, یہ رمضان کی ان راتوں میں سب سے بڑی عبادت رمضان کا خلاصہ اس میں آ گیا. وہ انسان کتنی دیر کے لیے, 1 سیکنڈ پورے رمضان کو لوٹ سکتا ہے. اور یہی ہے جبریل صاحب نے کہا چڑھتے ہوئے کہ برباد ہو گئے شخص جس نے رمضان کو نہیں کمایا. جی نماز نہیں پڑھی, فلاں کیا, کہتے اس کا کوئی تعلق نہیں رمضان سے, نمازوں کا, اس کا چیزوں سے. اصل چیز جس نے میں نے رمضان دیا تو اس نے وہ کام کیا. ہر رات کو اللہ تعالیٰ پکارتا ہے, اور شب قدر میں تو خاص پکار ہوتی ہے, نیچے رہتا ہے, کیا پکارتا ہے, اے بندو تم دوزخ کی آگ میں جل رہے ہو اور تمہاری موت تمہارے قریب ہے, آؤ مجھ سے توبہ مانگو, توبہ مانگو. صرف ایک عبادت کرنی ہے, کیا کرنی ہے؟ اچھا توبہ. جھوٹ نہیں بولوں گا, فراڈ نہیں کروں گا, سود نہیں کھاؤں گا, یہ نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں گا, یہاں سے نہیں دیکھوں گا, یہ سب سے توبہ. کوئی چیز مشکل نہیں نفس کے لیے. اگر یہ کر جاتے ہو تو الحمدللہ رمضان پورا انسان کو مل جاتا ہے, آخرت بن جاتی ہے, قبر بن جاتی ہے, دوزخ کے عذابوں سے. کتنے بڑے بڑے عذاب ان چیزوں کے قبر کے اندر. بھائی یہ جسم ہے, کپڑے اتریں گے, ننگا کریں گے لوگ, سارا لوگ جسم دیکھیں گے, خیر لوگ آئیں گے, ہمارے جسم کو پکڑیں گے, ہمارے اوپر پانی ڈالیں گے, ہمارے ہاتھوں کو سیدھا کریں گے, ہمارے منہ کھل چکے ہوں گے, آنکھیں یوں کھلی ہوں گی, منہ کھلا ہوگا, یہ سب نخرے ختم ہو چکے ہوں گے, اور سب دو کپڑے باندھ دیے جائیں گے. چند دیر کے لیے تماشا لگے گا, ہو جی کوئی مر گیا ہے, جماز آ رہی ہے, کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے اور ڈبے میں بند کر دیا جائے گا. یہ حال میرا اور تیرا ہے. ننگا کر کے چیزیں اتار کے جو آپ کہتے ہیں میرا 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 ہے, ننگے کر کے ڈبے کے اندر بند کر کے, اور اس کے دکا دو اس کو, اس کی جگہ ہے ہماری دنیا میں نہیں ہے, دکا دو اس کو, بس ختم اس کا کام. کہاں دبا دو اس کو, مٹی کے اندر, نظر ہی نہ آئے کسی کو, اس کی بدو بھی ہمیں نظر نہ آئے. کیا کرتا یہ, بڑی خوشبوئیں لگاتا تھا, یہ تو بڑی میک اپ کر کے نکلتی تھی, یہ تو بڑا فن کرتا تھا آدمی, یہ تو بڑا جناب آلہ خوب منہ کو اپنے حساب سے رکھتا تھا. اس نے تو کبھی سوچا ہی نہیں کہ شریعت مجھے کیا کہتی ہے, میں شریعت میری زندگی مجھے کیسے کہتا ہے میرا نبی کہ تو نے ایسے بن کے میرے پاس آنا ہے, تو نے صبح کیسے کرنی ہے, تو نے شام کیسے کرنی ہے, کچھ پتا نہیں. وہ تو ہم اپنی مرضی سے چلتے تھے, جب منہ بنا لیا جیسا بنا لیا, شکل بنا لی جیسے بنا لی, جو کچھ کر لیا, ایکسکیوزز اپنے رکھ لیے کہ جو دنیا کرتی ہے تو ہم بھی کر رہے ہیں. آج کھل جائے گا رستہ, جب ننگے کر دیا جاؤ گے, جسم سے کپڑے اتار لیے جائیں گے, غیر لوگ تمہیں ننگا دیکھیں گے جن سے تم چھپتے تھے, اور تمہارے ننگ کو دیکھیں گے, پانی ڈالیں گے, اس کے بعد بند کر کے ڈبے کے اندر لے آیا جائے گا, دھکیلتا ہوا لایا جائے گا. ادب رکھیں گے لوگ, پھر بھی ادب اللہ تعالیٰ قائم رکھتا ہے اس انسان کا, پردہ رکھتا ہے اس وقت تک بھی, اور اس کے بعد اٹھاؤ اٹھاؤ جلدی کرو جلدی کرو جلدی کی آزادی ہو, اور اس کو نام نہیں لیا جا رہا, اس کو چچا نہیں کہا جا رہا, اس کو مامنی, اس کو کیا کہا جا, باڈی ناش, نام ہی بھول گیا اس کا, ناش اٹھاؤ لاش اٹھاؤ, دیر ہو رہی ہے, باڈی کدھر ہے, باڈی کدھر ہے, باڈی کدھر ہے, ایک دم باڈی بن جاتا ہے, سب حضرت صاحب پیر صاحب سب ختم, کیا بن گیا, باڈی لاش بن گیا, نام ہی نہیں لے رہا ہوگا اس کا. یہ تو حقیقت ہے ہماری, کیا اتراتے ہیں ہم, اس حقیقت کو دیکھو اور ان راتوں کو دیکھو, اگر اس حقیقت کو پہچان جائے تو انسان اسی وقت توبہ کر کے اٹھے, اسی وقت توبہ کر کے اٹھے کہ میرا منہ کھل جائے گا, آنکھیں کھل جائیں گی, منہ ایسا ہو جائے گا اور پتہ نہیں کیا حال ہوگا, اور جناب جسم میرا ٹیڑھا ہو جائے گا, باندھ کے مجھے بند کر دیا جائے گا, اور پھر قبر کھود کے کہیں ڈالو اس میں, قبر میں دھکا دی جائے گا, اندر بند کر کے بالکل چڑھا دے اس کو مٹی در مٹی مٹی مٹی. ابھی تو کہتے ہیں کہ وہ آپ کچھ قدم بھی نہیں چلے ہوں گے, ہائے ہائے آخری زندگی اصل کھل جائے گا, کھل جائے گا. سانپ استہ بچھو, وہ سب جن کے لیے ہم فراڈ کرتے تھے, وہ سب جن کے لیے ہم دنیا لگاتے تھے, وہ سب جن کے لیے ہم نمازیں چھوڑتے تھے, وہ سب جن کی محبت میں غرق ہوتے تھے, خدا کی قسم کوئی بھی نہیں ہوا, کوئی دعا مانگنے والا بھی نہیں ہوتا. بچے بھی بھول جاتے ہیں, بیوی بھی بھول جاتی ہے, औलाद भी भूल जाती है, अपने भूल जाते हैं, नशे उतर जाते हैं, अजाब शुरू हो जाते हैं, जहन्नुम के अजाब शुरू हो जाते हैं, आग से कब्र को भर दिया जाता है, कोई सुनने वाला नहीं। एक दफा उसको ये हिम्मत नहीं होगी, एक दफा भी वो अल्लाह नहीं कह सकेगा, एक दफा सुभान अल्लाह नहीं कह सकेगा। चीख और पुकार को सुनने वाले सब सुनते हैं, सारे जानवर सुनते हैं, परिंदे सुनते हैं, सिवाय इंसान गाफिल को वो नहीं सुनता कि उसके अंदर अजाब क्या हो रहा है कब्र का। धोखा ना दो, मुनाफिक ना बनो, किसी के साथ चक्करबाजी ना करो, सच वाली जिंदगी गुजारो, अपने आप को नमाजी बनाओ, शक्ल शरीर की वाली बनाओ, सुन्नत वाली बनाओ, जिंदगी को पाक और साफ रखो, दिल को साफ और शफाफ कर लो। जो तरीके बताए हैं दिल साफ करने के, तौबा और अल्लाह का जिक्र और किसी अल्लाह वाली की सोबत को अख्तियार कर लो, बाकी सब अल्लाह की रहमत पर छोड़ दो। क्या फर्क है, जितनी चाहे दुनिया गाँव में साथ में इस हालत में आके चाहे बिल्डिंगें बनाओ, दुनिया कमाओ, जितनी भी आएंगी वो सब नेमतें होंगी अल्लाह ताला की। दुनिया से कोई नहीं हटाती आपकी ये चीज़, कोई नहीं हटाती। अल्लाह फिर आपको दुकान भी चलाएं, कारोबार भी चलाएं, तौबा के बाद जो चाहे आप करें, बस हद यही रखें कि करूंगा वही काम जो कानून शरीयत हमें बताती है, उससे आगे नहीं बढ़ूंगा। उसमें आपको दौलतें भी मिलेंगी अल्हम्दुलिल्लाह, इज्जतें भी नसीब देगा अल्लाह ताला, आसाइशें भी देगा, भूखा नहीं मारेगा इंशाअल्लाह। साथ के साथ करनी है भाई सच्ची तौबा, अल्लाह वाले को तलाश करो, उसके हाथ पे इंशाल्लाह जाकर तौबा करो। आज की रात फिर 23 की रात है इंशाल्लाह, जिक्र की मजलिस सुबह भी हो रही है, शाम भी हो रही है, क्यों सोते रहते हो, देख रात जय होगी। खबरदार सुबह भी जिक्र में बैठो, शाम भी जिक्र में बैठो, मस्जिद सलाने यहाँ कायम की हुई है, बैठ जाओ, बख्शिश होती है अल्लाह की। और तौबा करके उठे आज, आज की रात 23वीं रात जय कर दी, तौबा करके उठना है, पकड़ लो किसी अल्लाह वालों को, जी मुझे तौबा करो, जैसे नबी पाक से पास भेजी थी ना अल्लाह औरतें, तो अल्लाह भेजेगा आपको, खुद नियत करो कि मैं सच्ची सच्ची तौबा हजन वाले के गुनाह फिर नहीं करना हमें, ये कह के उठना इंशाल्लाह। करेंगे भाई
इंशाल्लाह,
चलेंगे दुरुस्त पढ़ने जिक्र करते हैं अल्लाह का।